आप जानना चाहते हैं कि कर्तापन और कर्म फल से कैसे मुक्ति मिल सकती है। ये तो हम सब जानते हैं कि कर्म हम सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं मिला जो कर्म करता हो दुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन उसके अंदर अपने बारे में और इस प्रकृति और ईश्वर के बारे में ठीक समझ ना होने के कारण सारी जिंदगी सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है और पूरे जन्म भर इसमें उलझा रहता है। चाहे छोटा सा बालक ही क्यों ना हो, हम सब देखते हैं कि बेचैनी लेकर पैदा होता है, बेचैनी के साथ ही पलता है, बेचैनी के साथ ही अपना जीवन जीता है और बेचैनी लेकर ही संसार से विदा हो जाता है। तो पूरी जिंदगी का जो कर्म है वो चैन प्राप्ति के लिए था, लेकिन यदि बारीकी से अध्ययन किया जाए तो इस जीव को कभी भी चैन मिल नहीं पाया। सुख की इच्छा में ये बेचैनी भोगता रहा। सत्पुरुष कहते हैं इसके पीछे कारण क्या है, आप कभी भी समतावलास पढ़ेंगे तो एक निर्णय वहां पढ़ने को मिलेगा आपको। ये संपूर्ण प्रकृति नाशवान और परिवर्तनशील है, संपूर्ण प्रकृति। और जो चीज नाशवान और परिवर्तनशील होती है उसी को हम सादे शब्दों में दुख रूप कहते हैं। और प्रकृति में ये मानव देह भी आ जाती है, ये भी प्राकृतिक चीज है। मानव का मन भी आ जाता है, क्यों? क्योंकि पूरी प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, जिसको हम कई बार सुन चुके हैं कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इसी की तीन गुणों की धाराएं आपके मन में भी चलती हैं। किसी के अंदर पाप वृत्ति उठती है उसके लिए कर्म करता है, किसी के अंदर भोग वृत्ति उठती है तो रजोगुण उसको पकड़ लेता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी, और किसी के अंदर मन में सतोगुण की करंट उठती है तो पूजा पाठ करता है, लोक कल्याण के कार्य करता है, दूसरों को सुख देने की कोशिश करता है। तो तीन गुणों की प्रवृत्ति मन के अंतर्गत भी है और पूरी प्रकृति में है। और जो स्वरूप है प्रकृति का वो ये तीन गुणों से युक्त ही है। तो जो तमोगुण है उसका मतलब ये होता है जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही बनी रहना चाहती है। जैसे कुछ मनुष्य भी देखेंगे जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, जो कहते हैं ना सुस्त निकम्मे, आप कह देते ना, कुछ करना ही नहीं चाहते, विकास की सोचते ही नहीं, तमोगुणी प्रवृत्ति है। रजोगुणी वो नई नई चीज़ें खोज करेगा, नई नई चीज़ें बनाएगा, नई चीज़ों की तरफ दौड़ लगाएगा, तो वो वस्तु जो है बदलाव चाहती है, हर चीज़ में बदलाव चाहती है, तो ये रजोगुण है। और सतोगुण जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठना चाहती है, किसी स्थिति में संतोष नहीं है, हर स्थिति से वो ऊपर उठना चाहती है। तो इसीलिए जो सतोगुणी जीव हैं वो जीवन की किसी स्थिति में वो संतुष्ट नहीं होते, हर स्थिति से वो ऊपर उठना चाहते हैं। इसका मतलब वो तीन गुणों से ही मुक्त होना चाहते हैं, और उनको कहाँ जाके संतोष मिलता है, वो तीन गुणों से मुक्त ईश्वर है इस प्रकृति के अंदर, और मेरी इस प्राकृतिक देह के अंदर, उस ईश्वर तक पहुंचकर ये जीव फिर बेचैनी से मुक्त होता है, दुखों से मुक्त होता है। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है ये तीन गुणों से युक्त है, और सारे कर्म आपके इन तीन गुणों के प्रभाव में ही होते हैं, और कोई भी कर्म आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन होते हैं, आपके गुणों में भी परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा तमोगुणी बना रहेगा, हमेशा रजोगुणी बना रहेगा, हमेशा सतोगुणी बना रहेगा, तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन होगा, हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन होगा, प्रधान एक गुण होगा, कोई तमोगुण प्रधान होगा, कोई रजोगुण प्रधान होगा, कोई सतोगुण प्रधान होगा। तो सतोगुण की प्रधानता जो है वो ईश्वर भक्ति के रूप में, सेवा के रूप में, दूसरों का भला सोचने के रूप में, दूसरे की भलाई के लिए कर्म करने के रूप में ये प्रकट होता है। तो ऐसे मनुष्य संसार में अच्छे मनुष्य कहे जाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इनकी बहुतायत बहुत कम है। ज़्यादातर संसार में तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव होता है। जिस समाज में स्वार्थ का और पाप का प्रभाव ज़्यादा होगा, आप खुद विचार कर लो, उस समाज में रहकर मनुष्य को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उस परिवार में रहकर मनुष्य को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इसीलिए देखा होगा आपने, अपने ही परिवार के लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, दूसरे का तो नंबर ही नहीं आता। अपने परिवार में ही इतने क्लेश पैदा होते हैं, सबको पता है, सब अपनी रिश्तेदारियां जानते हैं, सब अपने मित्रों को जानते हैं, तो जहां उनका क्लोज सर्किल है वहीं इतनी बेचैनी है कि बाहर तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हम सबका अनुभव कह रहा है। तो बताइए, सारी जिंदगी मैं सुख के लिए कर्म करता हूं, मुझको ये होश ही नहीं है, प्रकृति का स्वरूप ही यही है। राम के समय भी यही था, कृष्ण के समय में भी यही था, प्रहलाद के समय में भी यही था, आज के युग में भी यही है। हम केवल कल्पना ही करते रहते हैं, वो युग बहुत अच्छा था, बड़े सुखी लोग थे। जरा हिस्ट्री उठाकर देखो किसी भी युग की, कैसे लोग थे। मैंने तो कहीं इतिहास में पढ़ा नहीं रामराज कभी आया हो इस धरती के ऊपर। राम तो आए लेकिन रामराज कभी नहीं आया। पूरा इतिहास उठाकर आप देख लो, तो इसीलिए आदर्श की बातें तो कर सकते हैं लेकिन धरती पर आदर्श कभी स्थापित हो ही नहीं सकता, ये असंभव बात है। यदि ऐसा हो जाए तो प्रकृति का जो ये तीन गुणों का खेल है नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा, प्रकृति नहीं बचेगी फिर। तो उस हालत में तो ये सारा जगत जो है ब्रह्म रूप हो जाएगा। तो इसीलिए मनुष्य निरंतर प्रगति करता है, और कब तक प्रगति करता है, कब तक कर्म करता है, जब तक अंतर्यामी ईश्वर से उसकी भेंट नहीं हो जाती, या अंतर्यामी ईश्वर को जब तक वो जान नहीं लेता। अंतर्यामी ईश्वर को जानने के बाद उसकी स्थिति क्या हो जाती है इस जगत के बारे में? वाणी कह रही है, सब जग रूप ब्रह्म का भेद भ्रम ना कोय। उस समय ये भ्रम भी खत्म हो जाता है और इस समय ये द्वंद्व, जिसको भेद कहते हैं, ये द्वंद्व चक्र भी खत्म हो जाता है। यहाँ तो जो चीज़ देखो, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, चैन है तो बेचैनी है, सर्दी है तो गर्मी है, सूखा है तो बरसात है, हर चीज़ द्वंद्व रूप में मौजूद है। प्रकृति की हर चीज़ द्वंद्व रूप में मौजूद है और इस द्वंद्व में तो हर चीज़ में एक छांट लेता है, मुझे सर्दी चाहिए गर्मी नहीं चाहिए, मुझे दिन चाहिए मुझे रात अंधेरा नहीं चाहिए, मुझे अच्छे लोग चाहिए बुरे नहीं चाहिए, हर चीज़ में तू एक छांट लेता है। और तू खुद सोच ले कितने आइटम्स है तेरी चारों तरफ फैले हुए और हर में तेरी पसंद है। तो कभी तूने ये नहीं सोचा ये इच्छा मेरी कभी पूरी नहीं होगी? तूने कभी रुककर सोचा इस बात का? ये इच्छा मेरी 1,00,000 जन्म भी मिल जाए, एक जन्म की 1,00,000 आयु भी मिल जाए, 1,00,000 वर्ष, ये इच्छा मेरी कभी पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैं आशा कर रहा हूं प्रकृति के विरुद्ध जाकर। प्रकृति के स्वरूप के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, तो इसीलिए इस प्रकृति के स्वरूप करके ये वाणी कह रही है कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया जिस शोभा पाई करता। एक ही बात आ रही है, जिस मनुष्य ने उस ईश्वर के की शोभा को जान लिया, उस ईश्वर के राज्य को जान लिया, उस ईश्वर को जान लिया, वही व्यक्ति संतुष्ट हो पाया इस धरती पर, वही मनुष्य संतुष्ट हो पाया। चाहे उसको सुख कह लो, चाहे उसको आनंद कह लो, चाहे उसको शांति कह लो, नाम उसे कोई दे लो, लेकिन वो स्थिति बेचैनी रहित है। और ऐसी बेचैनी रहित है जहां कभी बेचैनी का प्रवेश दोबारा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये स्थिति आपको मिल जाए, फिर आपका कर्तापन भी खत्म हो जाएगा, आपका कर्म भी खत्म हो जाएगा। काहे के लिए कर्म करोगे फिर? कर्म तो आप सुख प्राप्ति के लिए करते हो, दुख प्राप्ति के लिए कर्म तो कोई करता ही नहीं। जब सारा संसार, सारा ब्रह्मांड सुख में बदल गया, तो कौन सा सुख प्राप्त करने की कोशिश करोगे आप? विचार करके देखो। तो इसीलिए सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है कि सारी प्रकृति, मैं, मेरे शरीर, मेरे मन के ये तीन गुणों से युक्त है, जिसको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। और ये तीनों गुण आपस में निरंतर बदलते रहते हैं, या यूं कहिए इन तीनों गुणों में आपस में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो ये जो रजोगुण है क्या, ये तमोगुण और सतोगुण के बीच का टेंशन है। ये रजोगुण की बीच की स्थिति क्या, ये तमोगुण और सतोगुण का टेंशन है। जैसे सतोगुण हर चीज से ऊपर उठाता है, तमोगुण जैसा है वैसी पड़ा रहना चाहता है, और रजोगुण एक्टिविटी चाहता है, संघर्ष चाहता है। इसीलिए वाणी में, उसमें गीता में आता है, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। भगवान कृष्ण इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रकृति का स्वरूप क्या है, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, और जो ईश्वर है वो इस संघर्ष से मुक्त है, वो निर्गुण है। तो इसी को महाराज जी ने लिखा, इस सारी बात जो आपके सामने एक्सप्लेन की गई, इसको महाराज जी ने एक सेंटेंस में लिख दिया। शुद्ध विवेक जो चैप्टर है उसमें लिखा उन्होंने कि प्रकृति नाशवान और परिवर्तनशील है, इसीलिए संपूर्ण प्रकृति दुख रूप है। इसी को उपनिषद लिख रहा है, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। तो वैदिक काल से लेके आज तक यही निर्णय है, हम ही मूर्ख हैं जो इस संसार में सुख की तलाश करते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। सत्पुरुषों ने जो रास्ता बताया उसकी जरूरत ही नहीं समझते, कहते हमारे मतलब की चीज नहीं है, ये तुम्हारे मतलब की होगी। तो गुरु भी कहता है ठीक है भाई, दुख भोगते रहो, हम क्या कर सकते। जो गुरु के पास जाएगा, उस पर विश्वास करेगा, उसके मार्गदर्शन को जीवन में स्वीकार करेगा, उसके अनुसार जीवन जिएगा, वो एक दिन इन दुखों से मुक्त जरूर हो जाएगा। हम गुरु के पास जाते ही क्यों हैं, उसकी तारीफ करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमको पता है गुरु के अंदर अशांति का लेश मात्र भी नहीं, चाहे हमने अपनी आंख से उसका जीवन ना देखा हो, क्योंकि हमको अच्छी तरह से पता है कि गुरु के मन के अंदर अशांति का लेश मात्र भी नहीं है। अर्जुन को भी पता है, मैं बड़ा बेचैन हूं, सारी दुनिया मेरे सामने जो खड़ी हुई है, दुनिया के लोग सब बेचैन है, लेकिन कृष्ण जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, इसके अंदर बेचैनी का लेश मात्र भी नहीं, पता है अर्जुन को। इसीलिए जब सेना देने की बात आई तो कृष्ण ने कहा सेना दुर्योधन को दे देता हूं। अर्जुन शांत रहा, उनका मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण को मांगा और मूर्ख दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को मांगा। क्योंकि दुनिया वाले क्या देखेंगे, कहेंगे भी दुर्योधन बड़ा होशियार है, देखो इसने सारी सेना मांग ली। लेकिन जो बुद्धिमान है वो क्या सोचेगा, अरे जिसने कृष्ण को ही मांग लिया उसके लिए बचा क्या धरती पर। तो गुरु से ईश्वर मांगा जाता है, और जो मूर्ख लोग हैं गुरु से कहते हैं मेरे बच्चा दे दे मुझे, एक मेरी संपत्ति बढ़ा दे। मेरा जो है वो बिगड़ा काम कर दे, मेरी हेल्थ ठीक कर दे, ये हम करते रहते हैं। तो इसीलिए हमारी विवेक की आंख बंद है। पूर्ण गुरु पर भरोसा आने के पश्चात भी, पूर्ण गुरु की बात जानने सुनने के पश्चात भी, जो दुनिया में ही भटकता रहे, दुनिया के तरीके से ही जीता रहे, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली इंसान कौन सा होगा। वो तो दुर्भाग्यशाली है ही, जिसको गुरु का पता ही नहीं, जिसके तालीम कभी जानी ही नहीं सुनी नहीं, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली वो जीव है, वो मनुष्य है, जिसने गुरु की तालीम को सुना भी, पढ़ा भी, उसके पश्चात भी संसार में गोते खाता था। उसे तो एक मौका मिला था दुख से मुक्त होने का, कर्तापन और कर्म फल से मुक्ति का। तो कर्तापन से और कर्म फल से मुक्ति का दूसरा नाम है ईश्वर प्राप्ति। तो जिसको ईश्वर प्राप्ति हो जाती है वो कर्ता कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसमें एक दूसरी वस्तु सहायता करती है आपकी, एक तो ये विवेक है, दूसरी वस्तु है वैराग्य। ये वैराग्य क्या है, हर चीज तो तीन गुणों से युक्त है, लेकिन फिर ये वैराग्य क्या है? मैं अपनी देह को अपना स्वरूप समझता हूं, हमेशा से एक भी नहीं बैठा यहां पर जो अपने आप को देह ना समझता। जितने भी कर्म करते हैं, जितना भी व्यवहार करते हैं, एक भाव हमारे अंदर बना रहता है कि मैं देह हूं। इसको रटते नहीं आप, मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये स्वाभाविक आपकी सोच है, स्वाभाविक निर्णय है कि मैं देह हूं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए जब शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां ये हर शास्त्र में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है, ये देह पांच प्राकृतिक तत्वों से बनी है, जिसको पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश कहते हैं। और बार बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इन पांच तत्वों के पांच गुण होते हैं। जो भी पदार्थ होगा उसकी प्रॉपर्टीज तो होंगी, उसके गुण दोष तो होते ही हैं। तो पांच तत्वों के ये पांच गुण होते हैं, जिसको शास्त्र में विकार करके कहा गया। वो जानते ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और हम सब व्यवहारिक रूप से जानते हैं, ये दुनिया में जितने पाप हैं, घर में जितने क्लेश हैं, संसार में जितनी लड़ाइयां हैं, इन पांच विकारों के कारण हो रही है। किसी में क्रोध प्रबल है, क्रोध में आके आग बबूला हो जाता है, लड़ बैठता है। किसी में लोभ प्रबल है तो पैसे के लिए जो जान दे देता है या जान ले लेता है। ईश्वर की पूजा भी छोड़ता है पैसा कमाने के चक्कर में, कहता है पैसे की कमी नहीं होना चाहिए, बस वो बढ़ते रहना चाहिए, साथ में ईश्वर भक्ति हो जाए कोई बात नहीं। लोभी आदमी की यही स्थिति होती है। और मोहग्रस्त जो होता है तो अपनी देह से बड़ा गहरा मोह होता है, देह करके फिर बच्चे बीवी बच्चों से बड़ा गहरा मोह होता है उसका, उसके लिए सारा जन्म खर्च कर देता है। कहता है मैं कर्तव्य पालन कर रहा हूं, बीवी बच्चों का लालन पालन कर रहा हूं, इसको कर्तव्य कहता है। मनुष्य जन्म लेकर तेरा कर्तव्य तो यही था, जो प्रश्न है कि कर्तापन और कर्म फल से कैसे मुक्ति पाई जाए, यह था कर्तव्य, तो इसी का नाम ईश्वर प्राप्ति है। और वाणी भी साफ कह रही है, मानुष्य जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। तू कह रहा है परिवार पालने के लिए दुर्लभ जन्म मिला मुझे, पैसा कमाने के लिए दुर्लभ जन्म मिला है, और वाणी क्या कह रही है, ईश्वर क्या कह रहा है, वो कह रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए दुर्लभ जन्म मिला है। तो मेरी सोच में ही सारी गड़बड़ है, तो कर्मों में तो सारी गड़बड़ होगी होगी, कहां होश है मुझे। दूर दूर तक आप देखो अपने आप को टटोल के, होश ही नहीं है अपना, बिल्कुल बेहोश या कह लो मदहोश होके हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये आपका स्वरूप ही पांच विकार युक्त है, जब देह आपका स्वरूप है, देह ही आप हो, तो ये पांच विकार आपका जीवन है, इसके लिए जी रहे हो आप। लेकिन किसी को होश नहीं है, संसार में इस बात का होश है, तारीफ करता है मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा हूं, कंपेयर करते हैं दूसरे से। अच्छा है तो कैसा है वो, जैसे कहते हैं ना अंधों में काने राजा है, इसकी दोनों फूटी है, मेरी एक फूटी हुई है, क्योंकि मेरी एक फूटी है मैं अच्छा हूं इससे, मेरी अच्छाई की स्थिति यह है। यदि मैं अच्छा हूं तो इसके अंदर दो विकार महान है, मेरे अंदर एक विकार महान है, बस ये अंधों में काने राजा, ये है संसार में अच्छापन, इसको कहते हैं, दोनों ही बुरे हैं। तो इसीलिए संसार का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा भी क्यों ना हो, यदि देह के अहंकार में जी रहा है तो कभी कंफ्यूज मत होइए कि इसमें पांच विकार नहीं होंगे, पूरा जीवन ही पांच विकार से युक्त है। आपको नहीं पता वो कहां जल रहा है, कहां तड़प रहा है, कहां बेचैन हो रहा है, और उसके कारण कहां लोग बेचैन हो रहे हैं, आपको नहीं पता। लेकिन ये जो शास्त्र का जो मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन से ये सिद्ध स्वतः ही हो जाता है कि जो व्यक्ति देह का अहंकारी है, देह को अपना स्वरूप समझ रहा है और प्राकृतिक जीवन जी रहा है, वो पशु जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए वाणी में स्पष्ट है, बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो कोई। जो कुछ भी आपने एनालिसिस सुना, इसका नाम है विवेक। तो जिसकी बुद्धि में यह विवेक है, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सारे मनुष्य देह, मनुष्य देह धारण करने के पश्चात भी पशु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी को कहते हैं पांच विकार से युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी पशु पक्षी हैं इनकी नेचुरल लाइफ है ये पांच विकार से युक्त जीवन। तो मनुष्य की भी नेचुरल लाइफ यदि है तो वो भी पांच विकार से युक्त है। तो बताइए पांच बीमारियां जिसके शरीर में लगी हों, जिसके मन में लगी हों, वो कभी चैन से जी सकता है? जरा विचार करके देखो, वो कभी चैन से जीने की संभावना है उसके क्या? तो इसीलिए जितने भी हमारे संसार के भोग विलास हैं, इंद्रियों के सुख हैं, कर्म इंद्रियों के और ज्ञान इंद्रियों के, वो ये पांच विकारों का भोग विलास है। तो जितने जितने भोग आप ज्यादा भोगते हो, आपके अंदर की हालत वही होती है, जिस प्रकार शुगर का पेशेंट जितने ज्यादा से ज्यादा शुगर का भोग करेगा, मिठाई खाएगा, उतनी ज्यादा वो रोग उसका बढ़ता जाएगा और बेचैनी उसके अंदर से, भय उसके अंदर से बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली यही स्थिति आपकी सांसारिक जीवन की है। ये मैंने एक संक्षिप्त सा एनालिसिस जो महाराज जी ने समता विलास में कर रखा है, लेकिन हम इसको इस तरह से पढ़ते नहीं है, इस तरह से मनन नहीं करते, इसीलिए इसी भ्रम में रहते हैं, अरे थोड़े सुख तो और भोग लें। अभी जैसे डॉक्टर ने कहा अब मिठाई मत खाना, शुगर तुम्हारी क्लाइमेक्स पे है, अब कुछ भी खतरा तुम्हारे दिल को हो सकता है, तुम्हारे दिमाग को हो सकता है, कहता है नहीं अभी 2-4 दिन और खा लेता हूं। वही स्थिति है फिर हमारी। तो इस खतरनाक स्थिति में, इस अज्ञान की हालत में हम जी रहे हैं और फिर भी अपने को अच्छा समझते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, मैं बड़ा अच्छा हूं। क्या अच्छा है तू जरा देख ले। यदि सही रूप से अपने जीवन को समझोगे, जैसा मैंने जीवन जिया है और जैसी मेरी प्लानिंग है, तो दुख होगा आपको अपने जीवन को देखकर, अपनी बुद्धि पर तरस आएगा, मैंने अपने हाथों से ही अपना जीवन नष्ट किया है, करा क्या है मैं। इसलिए यदि कभी भी आपने इस जीवन में ठीक चलना है तो एक ही रास्ता है, पूर्ण गुरु का आसरा आपको पकड़ना ही पड़ेगा। वो जो आपके जीवन का एनालिसिस पेश कर रहा है, जो जीवन दर्शन आपको सिखा रहा है, वो अज्ञानी नहीं है, वो भ्रम में नहीं है। मैं अज्ञानी हूं, मैं भ्रम में हूं, भ्रमित हूं, कुछ का कुछ समझ रहा हूं। इसलिए यदि मैं ठीक चलना चाहता हूं, बुद्धिमानी का जीवन जीना चाहता हूं, तो मुझको गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता जीने का बचता ही नहीं है। डूबना है आपने तो गुरु की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, डूबने से बचना है तो गुरु की तरफ जाने के अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में आपका रास्ता नहीं खुला हुआ है, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े प्रोफेसर के पास आपका इलाज नहीं। आप बेचैनी लेकर जी रहे हो और बेचैनी लेकर ही आपने मरना है, ये आपके बारे में फाइनल ट्रुथ है। तो इसीलिए जितनी जल्दी जाग जाएं, जितनी जल्दी गुरु की बात को मनन करके स्वीकार कर लें, उतना ही हमारा कल्याण है। नहीं तो ये 5 विकार युक्त जो जीवन है, जो प्राकृतिक जीवन है हमारा, सुख के लिए कर्म करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की लिखाई के लिए कर्म करते हैं, फिर उनके सुख के लिए कर्म करते हैं, ये हमारा अपने लिए भी वही हमने सिस्टम अपनाया, बच्चों के लिए भी वही सोचते हैं, अगली पीढ़ी के लिए भी वही सोचते हैं। तो ये जीवन हमारा जो प्राकृतिक जीवन है, ये 5 विकार को बढ़ाने वाला जीवन है। इसीलिए याद रखिए वाणी की ये पंक्ति, हमेशा याद रखिए कि 5 विकार महादुखदाई जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। जब तक तेरे अंदर परमार्थ का विश्वास नहीं आता, ईश्वर मार्ग पर चलने के बारे में विश्वास नहीं आता, तब तक इस महादुखदाई विकारों में तू भी वैसे ही जलता रहेगा जैसे सारा संसार जल रहा है। तेरी संतान भी जलेगी, तू सारा जन्म जलता रहा, तेरी संतान भी ऐसे ही जलेगी। और यदि उसने विकास कर लिया संसार में, तो उससे ज्यादा जलेगी फिर। इसलिए तू किस होश में है, तो संसारी तो सभी जल रहे हैं। तूने यदि ठंडक प्राप्त करनी है, तूने यदि इस कर्तापन और कर्म फल से मुक्ति चाहनी है, तो तुझको गुरु की तरफ देखना पड़ेगा, गीता की तरफ देखना पड़ेगा, कृष्ण की तरफ देखना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में विज्ञान बता रहे हैं, संसार के बारे में विज्ञान बता रहे हैं, और अपने बारे में अर्थात ईश्वर के बारे में विज्ञान बता रहे हैं। तो उस विज्ञान के अनुसार जब मेरी सोच होती है, मेरी बुद्धि का निर्णय होता है, तब मेरे कर्म सतोगुणी होने लगते हैं, और सतोगुणी कर्म निष्कामता की ओर ले जाते हैं धीरे धीरे करके, और मन संसार के भोग की तरफ से मुड़कर ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है, ईश्वर की याद में, ईश्वर में रस लेने लगता है। एक दिन उसके अंदर आ जाता है कि जो ईश्वर रस रूप है, जो आनंद रूप है, जो द्वंद्व से परे है, निर्द्वंद है, जो निर्गुण है, उस ईश्वर का आनंद इस देह के अंदर ही में मैं महसूस करने लगता हूँ। एक दिन उस आनंद में ही परमानेंट स्थित हो जाता हूँ और हमेशा हमेशा के लिए इस कर्तापन और कर्म फल से मुझको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।